ڈاکٹر صاحب، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ B2 کنویں کو کنٹرول کرنا تھا۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، دنیا کی تیل کی صنعت میں عالمی معیار کے مطابق اس قسم کے ابلتے ہوئے کنوؤں کو کنٹرول کرنے میں 4 مہینے لگ جاتے ہیں۔ ہماری کمپنی کے ماہرین نے تقریباً اتنی ہی مدت میں گیس رسنے کے راستے بدل دیے اور انحرافی کنویں کھود کر تیل اور گیس کے شعلوں کو کنٹرول کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب، اس اہم نقطے کے پیش نظر کہ ہمارے پاس محدود وسائل ہیں، اس پروجیکٹ میں 6 مہینے لگنے چاہیے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس جیسے دوسرے پروجیکٹ کے لحاظ سے یہ پروجیکٹ بے مثال تیزی سے آگے بڑھا ہے۔ مثال کے طور پر 2 سال پہلے انجام پانے والے پروجیکٹ میں بھی اتنا ہی کام تھا، لیکن ہماری کمپنی نے 6 مہینے میں اسے مکمل کر دیا۔
البتہ ایک تہائی قیمت پر۔
لیکن یہ اپنی مثال آپ ہے، وقت کو پیسے سے خریدنا چاہیے۔ اگر آپ مقامی افرادی قوت پر غور کریں گے تو آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ ہماری کمپنی کی افرادی قوت کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یا یہ کہ جناب عالی اگر حکم دیں تو غیر ملکی کمپنیوں کی مدد اور وسائل سے استفادہ کیا جائے۔
مسئلہ تو یہی ہے کہ اس کمپنی کا نام ایرانی ہے، لیکن تمام انجینئر اور لیبر غیر ملکی ہیں۔ ظاہر ہے کہ خرچ زیادہ آئے گا۔ کیا ایران میں کوئی نہیں تھا جو آپ نے لیبروں کی جگہ چینی انجینئروں سے استفادہ کیا ہے؟
جناب جسارت ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مقامی کمپنی میرے ساتھ ٹھہر ہی نہیں سکی۔
جتنا آپ کہہ رہے ہیں اتنا بھی برا حال نہیں ہے۔ آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں آج ہی وزارت پیٹرولیم میں آیا ہوں۔ آپ ہی کی کمپنی میں ایک انجینئر اسدی بھی تو ہیں۔
اسدی؟
شاید آپ ان کا نام بھی نہیں جانتے۔
ڈاکٹر صاحب، اس کمپنی میں تقریباً 100 افراد کام کرتے ہیں، ٹائپسٹ، عام ملازم، سب کو نام سے پہچاننا محال ہے۔
اسدی صاحب کوئی معمولی ملازم نہیں ہے، انہوں نے برسوں تک اس کمپنی میں عرق ریزی کی ہے، اس ملک کے بہترین انجینئروں میں سے ایک ہیں۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو انہیں منسٹری میں لاتا اور انتظامی امور ان کے سپرد کرتا، لیکن افسوس کہ وہ خود نہیں چاہتے۔
آپ صحیح فرما رہے ہیں، وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ ہم ان کی مزید خدمات حاصل کر سکیں۔ آخر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، شاید وہ اہم ذمہ داریاں نہیں سنبھالنا چاہتے اور شب و روز کام میں نہیں الجھنا چاہتے۔
آپ تو کہہ رہے تھے کہ انہیں نہیں جانتے ہیں۔
میں نے عرض کیا کہ شاید ایسا ہو۔ اچھا، تو اسدی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ پوچھ گچھ کی؟
جی، ان کا نام رسول ہے۔
علیکم السلام۔ اچھا،
اس کا ایک دوست ہے جس کا نام میسن زین الدین ہے، دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں۔
السلام علیکم۔
زین الدین ڈاکٹر کا داماد ہے۔
اچھا،
اسی بنا پر ڈاکٹر صاحب نے سمجھ لیا کہ کوئی انجینئر ہے جس کی صلاحیتوں سے استفادہ نہیں ہو رہا ہے۔
اچھا، یہ بتاؤ کہ اس ڈاکٹر کے کتنی لڑکیاں ہیں؟
اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہی لڑکی ہے۔
کیا خدا کا شکر، اگر 7 لڑکیاں ہوتی تو اس کی توانائیاں 7 جگہ تقسیم ہوتی۔ اس صورت میں ایک داماد، ایک بیٹی اور ایک باپ۔
نہ جانے اب تک انہیں کوئی عہدہ کیوں نہیں دیا۔
تم کتنے سادے ہو میاں، اسے عہدہ تو نہیں دیا لیکن ہر روز 10 بار کوڑے کی طرح ہمارے سر پر ماریں گے۔
یعنی کچھ تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔
اگر یہ اسدی واقعی انتظامی امور سنبھال سکتا ہے تو ہم کیوں اس سے فائدہ نہ اٹھائیں؟ ہمارے پاس تو ڈاکٹر صاحب والی مجبوری بھی نہیں ہے، اور اس بندے خدا کو بھی ڈاکٹر صاحب سے آشنائی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔
آپ سمجھتے ہیں کہ اس کام سے ڈاکٹر کا خیال بدل جائے گا؟
میں تو کمپنی کو اچھی طرح چلانا چاہتا ہوں، اور جو بھی مدد کر سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں ڈاکٹر صاحب کی مرضی کے پیچھے تھوڑی بھاگ رہا ہوں۔ कल इस असदी से मुलाकात तो कराओ।
अफसोस के मेरा शक सही निकला बेगम असदी, आपका दर्द आपकी किडनी से मुतालिक है। आपको कुछ दिन तक दवा खानी पड़ेगी ताकि आप ठीक हो सके। कुछ टेबलेट आपके लिए लिख रहा हूँ, इन्हें सुबह, दोपहर और रात में खाना है। कुछ इंजेक्शन भी हैं जिन्हें रोजाना लगवाना है।
डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे के लिए तो नुकसानदेह नहीं है?
जब तक आप दवा खा रही हैं, अपने बच्चे को खुश्क दूध दें।
यानी उसके लिए इतना नुकसानदेह?
ये टेबलेट आपको ठीक कर देंगे, लेकिन अफसोस के बच्चे के लिए मुज़िर हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, अगर वो सूखा दूध ना पिए तो हम क्या करें?
अगर मैदे में प्रॉब्लम ना होगी तो पिएगा। बहरहाल आप बच्चे को अपना दूध नहीं पिला सकती हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम।
सलाम वालेकुम। और सब खैरियत है? डॉक्टर क्या कह रहा था, बच्चा कैसा है?
खुदा का शुक्र है, कह रहा था कि ठीक हो जाएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास भी तुम्हारे लिए खुशखबरी है। डायरेक्टर साहब तक तुमको 3 बार बुलवा चुके हैं, माहिरी साहब।
माहिरी को मुझसे क्या काम है?
ऐसा लगता है कि कुछ अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। आप जरूर जानते होंगे कि डॉक्टर बाजार के जाने के बाद हमारी कंपनी ने अपनी तकनीकी उमूर का डायरेक्टर खो दिया, और डॉक्टर साहब जैसा आदमी तलाश करना बहुत मुश्किल काम है। और चूंकि मेरा इसरार है कि इस शोबे का डायरेक्टर कंपनी के ही किसी फर्द को होना चाहिए ताकि दूसरों में मजीद जज्बा पैदा हो, इसीलिए 2-3 महीने से आपको मद्देनजर रखे हुए था।
मुझे नहीं मालूम था कि आप हमें जानते भी हैं।
हकीकत तो यह है कि मैं डर रहा था कहीं जाहिर ना हो जाए और आप समझ न जाएं और अपना रवैया बदल लें।
आप कैसे समझे कि मैं होशियार हूं?
आपकी पेशानी और शानों से। मुझे यकीन है कि आपके तजर्बात और दयानतदारी कंपनी की तरक्की का बाइस होगी। अच्छा तो आपका क्या ख्याल है?
डायरेक्टर की तनख्वाह किसे बुरी लगती है? मेरी हमेशा यही ख्वाहिश थी कि जहां भी पहुंचूं अपनी मेहनत से पहुंचूं।
ये भी मेहनतों का ही नतीजा है, आपकी महारत की वजह से चुना है। लेकिन चूंकि आप पहली बार डायरेक्टर की पोस्ट पर पहुंच रहे हैं, इसलिए थोड़ा हौसला देने की जरूरत है ताकि चल निकलें।
आपकी नजर करम है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि मेरे इख्तियारात कितने हैं?
आपको मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं, भरपूर इख्तियारात। लेकिन चूंकि अभी प्रोजेक्ट, अफराद और कंपनियों से राबितों के बारे में पूरी तरह से बाखबर नहीं हैं, इसलिए मैं आपको मशवरा देता रहूँगा, लेकिन आखिरी फैसला फिर भी आप ही का होगा।
आपकी मुराद मुआहदे से पहले है या उसके बाद?
बाद में बहरहाल जान ही जाओगे, मेरा मकसद प्रोजेक्ट हवाले करने के मुकदमात हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट की तफसीलात आप जैसे लोगों के लिए जो अभी मैदान में उतरने वाले हैं ज़रा पेचीदा है।
माफ़ कीजिएगा, कानूनी लिहाज से मुश्किल पेश नहीं आएगी?
नहीं, मैं खुद निगरानी करूँगा, और जब भी आप महारत पैदा कर लेंगे उसके बाद तमाम शरी और कानूनी जिम्मेदारी आपकी होगी। अलबत्ता ये रविश तमाम दफातर में है कि साबिक और मौजूदा डायरेक्टर के अंदर कुछ ऊंच नीच होती है जिसकी बहुत सी जगह पर कोई अहमियत ही नहीं होती, लेकिन तेल इंसान की रगों में खून की मानिंद है, एक एक लम्हा कीमती है।
ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें।
अच्छा अब चलें, पहले नमाज पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साथियों, آج سے کمپنی کے مالی امور کی تمام ذمہ داری انجینئر اسدی صاحب پر ہے. سلوات بھیجیں.
مجھے دے دو بیٹا مجھے چاول, تم کچھ کھا لو, تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے.
امی السلام علیکم.
وعلیکم السلام بیٹا, آؤ آؤ.
مینا کیا ہوا, پریشان کیوں؟
میں ایک ایسی بیکار ماں ہوں جو اپنے بچے کو دودھ بھی نہیں پلا سکتی.
یہ کیسی بات کر رہی ہو؟
میں اب یہ بےہودہ ٹیبلٹ نہیں کھاؤں گی, میں خود اپنے بچے کو دودھ پلاؤں گی.
اگر وہ دوائیں نہیں لوگی تو بیماری پھر پلٹ آئے گی.
بلا سے واپس آنے دو. تم چاہتے ہو کہ میں ایسی بیٹھی دیکھوں میرا بچہ میرے سامنے تڑپتا رہے؟
خشک دودھ تو دیتی ہو نا.
خشک دودھ سے اسے الرجی ہے رسول, کیا کروں, میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. آج مجبوراً اسے تھوڑا سا خشک دودھ دیا. اب ایک گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ اس کا سارا بدن سرخ ہو گیا. بے زبان ایک گھنٹے تک روتا رہا.
کل اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا, یقیناً کوئی راستہ نکل آئے گا, بھروسہ رکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, خدا یا قبول فرما. یہاں ہوں, تم سے کچھ کام ہے.
کیا بات ہے رسول جان؟
یہ میٹنگ ایجنڈے کا کیا چکر ہے؟
ماہری کے دفتر سے آیا ہے یار.
جب میں اس میٹنگ میں تھا ہی نہیں تو دستخط کیوں کروں؟
یہ مجھ سے پوچھو گے؟ اس میں کیا مشکل ہے؟
میں نے عرض کیا کہ میں اس میٹنگ میں نہیں تھا.
لیکن مجھے سب کچھ معلوم ہے, کوئی مشکل نہیں ہے.
جی صحیح ہے, لیکن جب میں اس میٹنگ میں تھا ہی نہیں تو اس پر دستخط کیوں کروں؟
بظاہر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے تھے, لوگ آپ کے بغیر ہی میٹنگ کرنے پر مجبور تھے.
ماہری صاحب, اس ایجنڈے کی شرکتیں بہت اہم تھیں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ مجھے تمام باتیں معلوم ہونا چاہیے.
شاید آپ اپنا وعدہ بھول گئے. آپ ابھی بہت مشکلات میں ہیں, لیکن آپ کو تمام امور سے باخبر رکھنے کے لیے کمپنی معطل نہیں رہ سکتی. یہاں کا کام ہونا چاہیے, پورا ملک ٹھپ پڑ جائے گا ورنہ. آپ مسئلے کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں نا؟
آپ کے فیصلوں کا میں مکمل احترام کرتا ہوں, لیکن اس میٹنگ کے قانونی ہونے کے لیے اسے دوبارہ ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اب جب آپ کو اصرار ہی ہے تو میں حکم دیتا ہوں کہ تمام اراکین اکٹھا ہوں تاکہ آپ کی موجودگی میں پروجیکٹ پر دوبارہ بحث کرائی جائے. لیکن کمپنی کے لیے کچھ اراکین کے بیرون ملک دورے کی بنا پر اس میں کچھ ہفتے کی تاخیر ہو سکتی ہے.
لیکن یہ پروجیکٹ دیر سے شروع ہونے میں کمپنی کا نقصان ہے.
میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. اسدی صاحب, پیارے دوست, یہاں ممکن ہے تمام کام ہمارے اور آپ کے نظریے کے مطابق آگے نہ بڑھیں، لیکن جیسے بھی ہو جلد سے جلد ان پروجیکٹوں کو مکمل ہونا ہی ہے۔ میں آپ کی توجہ اور حساسیت کی تعریف کرتا ہوں، لیکن اگر کچھ کام اعتماد کی بنیاد پر بھی آگے بڑھ جائیں تو اچھا ہے، تو کسی کو نقصان بھی نہیں ہوگا اور پورے ملک کو فائدہ پہنچے گا۔ اچھا تو اب کیا کریں گے؟ پروجیکٹ میں تاخیر کریں گے یا کام آگے بڑھنے دیں گے؟
ہو گیا ہے، روزہ رکھنا ہے تو اٹھ جائیے۔
شکریہ۔
رسول، کیا ہوا؟ کچھ رنجیدہ نظر آ رہے ہو۔
پورا پھنس گیا ہوں بہزاد، یہ پوسٹ قبول نہیں کرنی چاہیے تھی۔
اس طرح بات کرو کہ میں بھی کچھ سمجھوں۔
لو پڑھ لو، صاحب نے اس پر ایک نوٹ بھی لگا دیا ہے کہ دستخط کرو۔
ارے یار ٹھیک ہے، تم دستخط کر دو۔
جب لسٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی تو کیسے دستخط کروں؟
یار رسول، اتنا الجھا کیوں رہے ہو؟ تمہارا باس تم سے کہہ رہا ہے دستخط کرو، تم بھی کر دو۔
اتنی آسانی سے؟
اس کے انجام سے ڈر رہے ہو نا؟ ڈرو مت یار، اس کام کا تمہارے پاس جواز ہے۔ ایک شخص جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اور تمہارا چیف بھی ہے کہہ رہا ہے دستخط کرو، تم بھی کر دو۔ اس کام میں کہاں سے مشکل ہے؟
ہاں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے اور میں جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟
ارے رسول، تم بھی انسان کو پاگل بنا دیتے ہو۔ ارے یار، تمہارا بچہ اسپتال میں ہے، تمہاری بیوی بیمار ہے، اس حالت میں ماہر ہی چلو لینا چاہتے ہو؟
یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بہزاد؟ بھیا مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے یا نہیں۔
تمہیں کہاں سے معلوم ہے کہ ماہری کے اندر کھوٹ ہے؟ کیوں لوگوں پر الزام لگاتے ہو؟
میں کسی پر الزام عائد نہیں کر رہا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈائریکٹر کا کم سے کم اختیاری ہے یہ ہے کہ پوری صورتحال سے معلوم۔
آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا ہوگا، تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے تمہارے پاس کوئی اور راستہ بھی موجود ہے۔
ہے، دستخط نہیں کروں گا۔
اچھا تو کیا پھر ماہری بیٹھ کر تمہیں ٹک ٹک دیکھتا رہے گا؟ ارے ایک سازش کر کے تمہیں باہر نکال پھینکے گا۔
میری بلا سے بہت اچھا ہوگا۔
تمہارے بیوی بچوں نے کیا گناہ کیا کہ تم ان کے لیے مشکل کھڑی کر رہے ہو؟ تم ابھی جاؤ اور آنکھیں بند کر کے دستخط کر دو۔
میں اپنے بچوں کو غذائے حرام نہیں کھلاؤں گا۔
میں تم سے چوری کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مان جاؤ اور مشکلات کھڑی نہ کرو۔ کیا حلال روزی کمانے کے لیے سب کو جہاد کرنا چاہیے؟
صحیح ہو یا غلط، میں یہ نہیں کروں گا۔
رسول، تم اپنی پوزیشن کیوں نہیں سمجھتے؟ تم اس مقام و مرتبے اور اس اختیار و طاقت کے ذریعے ہزار کار خیر کروا سکتے ہو، اتنی آسانی سے کیوں میدان چھوڑ رہے ہو؟ جم کر اپنی کرسی سے چپک جاؤ، اس طرح ہزاروں بدعنوانیاں روک سکتے ہو۔ کیا یہ برا ہے؟
عزیز دوست، وہ کار خیر جو آپ کہہ رہے ہیں ادھار ہے، लेकिन ये दस्तखत एक बहुत बड़ी गलती है जो निगाहों के सामने है। मेहरबानी करके इसे माहिरी के दफ्तर में वापस कर दो।
मुतमईन हो?
बिल्कुल।
इताद साहब, आपका जैसा हुक्म।
अली का क्या हाल है? डॉक्टर ने क्या बताया?
कह रहा था कि जो भी उससे बन पड़ेगा वो करेगा, लेकिन वो कुछ ज्यादा नहीं कर सकता।
ये तो कोई जवाब नहीं हुआ।
रसूल, हमें अली को किसी और अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, एक अच्छे से अस्पताल में। मैं जानती हूँ कि इसका खर्च ज्यादा होगा, लेकिन कोई और चारा भी नहीं।
पैसे की फिक्र ना करो, मैं इंतजाम कर लूंगा।
रसूल, कोई मसला पेश आया है?
नहीं, बस जरा थका हुआ हूं। मेरी अंगूठी मिली या नहीं?
नहीं। काम के सिलसिले में परेशान हो, है ना?
तुम्हें कैसे मालूम?
छुपाओ नहीं, मुझे सब मालूम है।
बेहसाब पेट का हल्का।
रसूल देखो, मैं सब जानती हूँ कि तुम मेरी वजह से मुश्किलात को छुपाते हो, लेकिन जान लो कि ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है। मुझे और इस शेरखार को हमेशा से ज्यादा इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। अगर खुदा ना खासा तुम्हारी नौकरी खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे? मैं तो ये सोच के भी कांप जाती हूँ।
मीना बेगम, मीना, मैं अली का शिया हूँ, यूं ही बैठ कर किसी का हक पामाल होता नहीं देख सकता।
यानी अगर तुम नहीं होगे तो पामाल नहीं होगा?
कम से कम खाने में तो शरीक नहीं होऊंगा।
मैं ये तो नहीं कह रही कि चोरों में शामिल हो जाओ। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे घर में आने वाली रोटी हलाल हो। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जरा नरमी बरतो। नरमी हुक्म अक्ल है, और जब तुम्हारे पैर जम गए तो उनके सामने खड़े हो जाना।
अमीर अल मोमिनीन से कहा गया कि आओ खलीफा बन जाओ, हमारी शर्तों के मुताबिक हुकूमत करो, लेकिन आपने कबूल नहीं किया।
तुम खुद ही कह रही हो अमीरुल मोमिनीन। हम कहाँ और अमीरुल मोमिनीन कहाँ?
मैं अली का दामन नहीं छोड़ना चाहता, नहीं चाहता।
इंजीनियर साहब, ये मीटिंग का एजेंडा अभी फाइल में ही है, दस्तखत नहीं किया आपने?
मैं मुतमईन नहीं हुआ, दस्तखत नहीं किए, क्योंकि कल मुझे जवाब देना होगा।
किसे जवाब देना पड़ेगा? किससे डर रहे हैं आप?
अपने मौला अली से डरता हूँ।
अस्तग़फ़िरुल्लाह। इंजीनियर साहब, मैं आधे साल रोजा रहता हूँ, आप मुझे अल्लाह से डरा रहे हैं?
आप खुश नसीब हैं, लेकिन जब तक मैं मुतमईन नहीं हूँगा दस्तखत नहीं करूँगा।
अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम।
मैं ठीक हूँ। माहिरी साहब ने आपको देने के लिए कहा है।
है क्या?
जुनूब की तरफ आपका ट्रांसफर लेटर।
क्या मैडम, माहिरी साहब हैं?
जी हाँ, लेकिन मीटिंग में हैं।
मुझे उनसे अभी मिलना है।
नहीं, कल तक उनके पास वक्त नहीं है। असदी साहब रुकिए। अरे रुकिए भाई, कहाँ जा रहे हैं? माहिरी साहब, मैंने इनसे कहा भी कि आप मीटिंग में हैं, लेकिन इन्होंने।
कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं।
मुझे क्यों जुनूब जाना है?
इसलिए कि आपका असली काम जुनूब में है, और नए प्रोजेक्ट के लिए आपको वहीं रहना है। ये कंपनी का कानून है।
लेकिन अरसे से इस कानून पर अमल नहीं हो रहा।
आपने वादा किया है कि कंपनी को जहां जरूरत होगी वहां काम करेंगे। इस वक्त मुल्क के जनूबी इलाके में आपकी जरूरत है। अगर कंपनी में रहना चाहते हैं तो आज ही आपको जुनूब जाना होगा। दरअसल इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी अफराद और कंपनियों को मरकज से मुंतकिल करना है।
मैं वहाँ नहीं जा सकता, मेरा सब कुछ यहाँ है, मेरा बच्चा मरीज है।
आपके जाती मसाइल का कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तक कंपनी ने बहुत रियायत की, कौमी प्रोजेक्ट तो आपके मसाइल की वजह से मुअत्तल नहीं रह सकते सदी साहब।
ये सब उन कागजों पर दस्तखत न करने की वजह से है ना?
मैं उन कागजात पर दस्तखत के सिलसिले में आपकी तवज्जो पर मशकूर हूँ। मैंने कह दिया है कि मेरी तरफ से तहरीरी तौर पर आपका शुक्रिया अदा कर दिया जाए, लेकिन जब ये पोस्ट कबूल की है तो मुश्किल दिन के लिए भी खुद को तैयार रखना चाहिए। माना कि जुनून में गर्मी है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ कुर्सी पर बैठना ही मुदीरियत नहीं है।
मैं इस्तीफा देता हूं।
जैसी आपकी मर्जी। अगर कल तक उनका ख्याल न बदला तो फाइल तहकीकात के लिए भेज दो।
डॉक्टर साहब नाराज नहीं होंगे?
क्या तुम समझते हो कि डिप्टी मिनिस्टर एक गुनहगार की हिमायत करेंगे?
नहीं,
इस खेल में चित भी हमारी है और पट भी हमारी है। अगर काम पर वापस आ जाएं तो जो हम कहेंगे वो उन्हें करना पड़ेगा, और अगर वापस ना आए तो ये फाइल उन्हें बर्बाद कर देगी, और फिर डॉक्टर भी कंपनियों के उमूर में इतना अगर मगर और मुदाखलत नहीं करेंगे। जल्दबाजी मत करो रसूल, अभी देर नहीं हुई है, सब कुछ ठीक हो सकता है।
सूरत हाल इससे कहीं ज्यादा खराब है। जब मैंने कहा कि मुस्ताफी हो रहा हूँ तो सिर्फ मुझ पर एक नजर डाली, उन्होंने पहले से सब कुछ सोच रखा है।
तो फिर माजरा यहीं पर खत्म नहीं होगा?
नहीं, हरगिज नहीं। सिर्फ मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि करना क्या चाहता है। अगरचे वो जो कुछ करना चाहे कर सकता है, लेकिन मैं पूरी तरह उसके जाल में फंस गया हूँ, ना आगे बढ़ सकता हूँ ना पीछे।
ये तुम्हें दो दिन पहले ही करना चाहिए था।
ऐसा नहीं है, ये माजरा दो रोज से शुरू नहीं हुआ है। जब से माहिरी ने मुझे ये पोस्ट दी है उसी वक्त से जानता था कि उसे क्या करना है। वो मेरे जरिए इस डिप्टी मिनिस्टर को नीचा दिखाना चाहता था, जिसमें वो कदर कामयाब हो गया।
हमें तो यहीं पर रहना पड़ेगा।
क्यों?
क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाद कैप्टन नसीरी है। वो अगर डायरेक्टर बन जाए तो लोगों के मुंह का लुकमा छीन कर बास के सामने रख देगा, समझ रहे हो? सिर्फ चापलूसी में, और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम।
नहीं भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो, दुनिया में रूनुमा होने वाले तमाम वाकयात का तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं।
हरगिज नहीं, लेकिन एक छोटा सा दस्तखत करके सबको बचा सकते थे, लेकिन ये नहीं किया क्योंकि रिस्क नहीं करना चाहते थे।
इसका नाम रिस्क नहीं है, गुनाह है।
अच्छा,
गुनाह है?
अच्छा, अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह मेरी गर्दन पर। क्या हो जाए अगर इंसान बड़े कामों के लिए एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद कर ले?
और अगर इसका सिलसिला जारी रहा तो?
रसूल, तुम अब भी अपनी ही बातें किए जा रहे हो, दर से अखलाक क्यों देना चाहते हो? मियां, मैं हकायक बयान कर रहा हूँ और तुम अपने आइडियल ही में गुम हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि दुनिया में कभी कोई गुनाह न हो, लेकिन अब जबकि हर जगह बदनवानी फैली हुई है, जब हमारे डायरेक्टर माहिरी साहब ही बदनवानियाँ करने लगे हैं, तो कैसे उनका मुकाबला किया जा सकता है?
बेहसाब मियां, हर रास्ते से नहीं, सिर्फ सही रास्ते से ही रोका जा सकता है। सही रास्ता होना चाहिए।
सही रास्ता यही है कि इन्हें निकाल दिया जाए, समझे?
बिल्कुल।
तुम लोग क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? नसीरी डायरेक्टर नहीं हो सकता क्योंकि मुनासिब इंसान नहीं है, उसमें लियाकत नहीं है। माहिरी भी ये बहुत अच्छी तरह जानता है।
लेकिन अपने बड़े के सामने बात नहीं करता, ये बहुत अहम है। हाँ,
जरा अपनी आंखें खोलो, अपने अतराफ को अच्छी तरह देखो, बस सिर्फ यूं ही आते जाते न रहो, अब इतना अंधेर भी नहीं है।
सलाम अलैकुम।
सलाम। माफ कीजिएगा इंजीनियर साहब।
क्या हुआ?
मैं शर्मिंदा हूँ, आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है।
लेकिन क्यों?
मुझे हुक्म दिया गया है, आप अंदर नहीं जा सकते।
किसने कहा?
ऊपर से हुक्म है, इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम।
लेकिन मैं 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ।
मैं जानता हूँ इंजीनियर साहब, लेकिन मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। जाइए।
बेहजाद सलामकुम, देखो यहाँ क्या हो रहा है, गार्ड मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है और फिर मेरी गुज़श्ता महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली है, बात क्या है?
ये सब माहिरी की हरकत है रसूल।
मगर उसने ऐसा क्यों किया है?
तुम्हारी फाइल की वजह से।
फाइल? कैसी फाइल?
मुझे नहीं मालूम, लोग यही कह रहे हैं, उसने तुम्हारी बदउनवानियों की एक फाइल तैयार की है।
मैंने तो कोई बदउनवानी नहीं की है।
नहीं मालूम, शायद तुम पर केस हो जाए रसूल। तुम्हारे लिए जाल बिछाया गया है, बेहतर है कुछ दिन इधर ना हो रसूल। रसूल, रसूल, अभी लाइन पर हो, कुछ बोलते क्यों नहीं?
बेहसाब, तुम्हारे पास उस प्रेस का नंबर है जिसको अकाउंटेंट की जरूरत थी?
हाँ हाँ, क्यों?
तुम एड्रेस दो।
ठीक है ठीक है, लिखो।
बोलो।
जोश स्क्वायर।
ठीक है।
मुझे अभी अकाउंटेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एक मामूली मजदूर चाहिए। मैं नहीं समझता कि इतने दिनों तक कुर्सी पर बैठने के बाद तुम मजदूरी कर सकोगे।
मैं इसी वक्त से अपना काम शुरू कर सकता हूँ?
बच्चे की वजह से तुम परेशान हो?
जब बरसों की नसर नियाज के बाद अल्लाह ताला ने 13 रजब को हमें अली दिया, तो मैंने सोचा कि रसूल, ये कोई मामूली बात नहीं है, यकीनन इसमें कोई हिकमत जरूर है। इतना खूबसूरत बच्चा, वो भी हजरत अली अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश पर, कोई ऐसी नेमत नहीं है कि हर एक को मिल जाए, उसकी कद्र करनी चाहिए। उसी वक्त मैंने कसम खाई कि मौला अली के रास्ते पर चलूंगा। मैं इस तरह अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता था शायद, लेकिन मैं खुशफहमी में था अम्मी। मैं पहले ही जानता था कि मुश्किल काम है, लेकिन मैं नहीं समझता था कि मेरी हिम्मत इतनी कमजोर होगी। डरता हूं कहीं अपना अहद पूरा न कर पाऊं। थक गया हूं, खुदा की कसम थक गया हूं।
तो तुम्हें अपनी फिक्र है, तुम्हें अपने अमाल की फिक्र है। खुशकिस्मत हो बेटा जिसको अपने अमाल की फिक्र हो। तुम्हें फिक्र है कि किस तरह से अपना वादा पूरा करो, अल्लाह भी उसकी मदद करता है। बिल्कुल खुदा उसकी मदद करता है। बेटा आज रात उसके घर जाओ और जाकर दुआ करो कि खुदा तू ही उसकी मदद कर, और खुदा पर तवक्कुल करो। तुम जाओ दुआए अबू हमजा सुमाली पढ़ो और फिर सब कुछ उस पर छोड़ दो।
जरूरी हो हुक्म जारी कर दो, उसके बाद मंसूबा बंदी के शोबे में भेज दो ताकि वो उसका जायजा लें। ये जरूर कह देना कि मोइना मेयारात के मुताबिक काम करें।
जरूर।
आओ इसके दस्तावेज पर भी खुद ही दस्तखत कर दो। हाँ, याद रखना कि दर्ज होने की तारीख कल की डालना, और जब काम खत्म हो जाए तो उसे दोबारा मेरे पास भेज दो।
जरूर। खुदा हाफिज़।
जाओ, खुदा हाफिज़।
इसे जमाल जादे साहब को दे दें।
जी अच्छा ठीक है।
फैजा जरा इस पे एक नजर डालो।
ये क्या है?
इन चीजों के नाम कभी तुमने सुने हैं?
ये फाइल तुम्हारे पास क्या कर रही है?
नसीरी के दफ्तर से आया है।
अरे वाह, नसीरी से क्या चूक हुई है? आपकी नजर में इससे कुछ साबित हो सकता है?
ये तुम्हारे हाथ में कैसे पहुंची?
नसीरी ने गलती से यह फाइल मंसूबाबंदी अफसर के पास भेज दी थी। मैंने इसकी एक कापी रख ली।
ये तनहा काफी नहीं है, बड़ी आसानी से इसका जवाब पेश किया जा सकता है, बिलखसूस ऐसी सूरत में जब इसकी असल कॉपी भी नहीं है। सिवाय ये कि
इस जैसी कुछ और बदउनवानियां ढूंढी जाएं।
उस वक्त उसे बदउनवानी कहा जा सकता है।
हमें रसूल असदी को बुलाना पड़ेगा। अगर कंपनी के दस्तावेजात उन्हें दें तो वो हर चीज की तह तक पहुंच जाएंगे।
माहिरी असदी साहब की तरफ से हसास है, वो फौरन समझ जाएगा। ये काम तुम्हें करना पड़ेगा।
मुझसे जो हो सकेगा मैं रसूल के लिए करूंगा।
कंपनी के तमाम दस्तावेजात तुम्हें दूंगा, उसका कोई ना कोई बहाना भी निकालूंगा, लेकिन तमाम काम तुम्हें यही करने हैं। वजीर के दफ्तर में फोन लगाओ।
अगर साबित हो जाए कि माहिरी साहब ने चोरी की है तो क्या करेंगे?
इत्मीनान रखो, जब तक गिरफ्तारी का वारंट नहीं जारी करा लूंगा छोड़ूंगा नहीं उसे।
गिरफ्तारी अंजाम पा चुकी है, हम पहुंच रहे हैं।
चलो।
वालेकुम अस्सलाम।
असदी साहब।
जी मैं ही हूँ।
माफ कीजिएगा, ये अंगूठी आपकी है क्या?
अरे हाँ हाँ, कहाँ मिली?
एक घंटे पहले एक बेड के नीचे से मिली थी।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी।
कोई बात
नहीं, मिल गई, जहमत हो गई आपको।
कोई बात नहीं,
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा उन्हें जजाए खैर दे। देखा,
बहुत मोमिन खातून है। इनका लड़का बगल वाले कमरे में था, मुसलसल बच्चे के लिए दुआ कर रही थी। नर्स कह रही थी कि इनके माली हालात भी अच्छे नहीं हैं।
तो फिर देर किस बात की, जल्दी जाओ उसके पास, जल्दी जाओ।
अस्सलाम।
वालेकुम। आओ बेटी। ओ, मेरा बच्चा, नींद आ रही है इसे।
जी हाँ।